नरसिंह चतुर्दशी के अवसर पर प्रहलाद महाराज के गुणों की चर्चा कल से प्रारंभ की थी, आज उसको आगे बढ़ाएंगे। कृपया श्लोक को दोहराइए। ब्रह्मण्यशील संपन्नः सत्यसंधो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां एकप्रिय सुहृत्तम दासवत्सन्न तार्यांघ्रि पितृवत् दीनवत्सलः भ्रातृवत् सदृशे स्निग्धो गुरुश्वीश्वर भावनः विद्यार्थ रूप जन्माड्यो मानस्तंभ विवर्जितः ब्रह्मण्यशील संपन्नः सत्यसंधो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां एक प्रिय सुहृत्तम दासवत्सन्न तार्यांघ्री पितृवद्दीनवत्सल भ्रातृवत्सदृशे स्निग्धो गुरुशीश्वर भावनः विद्यार्थ रूप जन्माड्यो मानस्तंभ विवर्जितः ब्रह्मण्यशील संपन्नः सत्यसंधो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां एक प्रिय सुहृत्तम दासवत्सन्न तार्यांघ्री पितृवद्दीनवत्सल भ्रातृवत्सदृशे स्निग्धो गुरुश्वीश्वर भावनाः विद्यार्थ रूप जन्माड्यो मानस्तंभ विवर्जितः। जी,
thank you.
स्निग्ध गुरु शिष्य ब्राह्मण्य अच्छे ब्राह्मण के समान शील संपन्न समस्त सद्गुणों से युक्त सत्य संधा परम सत्य को जानने के लिए कृत संकल्प जितेन्द्रिय इंद्रियों तथा मन को पूरी तरह वश में करते हुए आत्मवत परमात्मा के समान सर्वभूतानां समस्त जीवों को एक प्रिय एकमात्र प्रिय सुहृत्तम सर्वश्रेष्ठ मित्र दासवत नीच सेवकों की तरह सन्नत सदैव आज्ञाकारी आर्य अंग्री महान पुरुषों के चरण कमलों पर पितृवत पिता के ही समान दीनवत्सलह गरीबों पर दयालु भ्रातृवत भाई के ही समान सदृशे अपने समान वालों को स्निग्ध अत्यंत प्रेम गुरुषु आध्यात्मिक गुरुओं में ईश्वर भावना भगवान के समान मानने वाला विद्या शिक्षा अर्थ धन रूप सौंदर्य जन्म कुलीनता आढ्य से संपन्न मान गर्व स्तंभ अविवेक से विवर्जितः पूर्णतया मुक्त अनुवाद तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। यहाँ पर हिरण्यकश्यपु के पुत्र महाराज प्रहलाद के गुणों का उल्लेख हुआ है। वे योग्य ब्राह्मण के रूप में पूर्णतया सुसंस्कृत सच्चरित्र तथा परम सत्य को समझने के लिए दृढ़ संकल्प थे। उन्हें अपनी इंद्रियों तथा मन पर पूर्ण संयम था। परमात्मा की भांति वे प्रत्येक जीव के प्रति दयालु थे और हरेक के श्रेष्ठ मित्र थे। वे सम्मानित व्यक्ति के साथ एक दास की भांति व्यवहार करते थे। गरीबों के वे पिता तुल्य थे और समान धर्माओं के प्रति वे दयालु भ्रात्रा की तरह अनुरक्त रहने वाले तथा अपने आध्यात्मिक गुरुओं तथा गुरु भाइयों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तरह मानने वाले थे। वे उस बनावटी अभिमान से पूरी तरह मुक्त थे जो उनकी अच्छी शिक्षा धन सौंदर्य व राजसी जन्म के कारण संभव था। तात्पर्य ये वैष्णव के कतिपय गुण हैं। वैष्णव स्वतः ही एक ब्राह्मण होता है क्योंकि उसमें ब्राह्मण के सारे गुण पाए जाते हैं। शमोदमस्तपः शौचम क्षांतिराजम एवच ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्मकर्म स्वभावजम शांति आत्मसंयम तपस्या शुचिता सहिष्णुता ईमानदारी या साधुता बुद्धि ज्ञान तथा धार्मिकता ये गुण हैं जिनसे ब्राह्मण कार्य करता है। भगवद्गीता 18वां अध्याय 42वां श्लोक। ये सारे गुण वैष्णव के शरीर में प्रकट होते हैं। अतः पूर्ण वैष्णव एक पूर्ण ब्राह्मण भी होता है जैसा कि ब्राह्मण्य शील संपन्न शब्दों से प्रकट होता है। वैष्णव परम सत्य को समझने के लिए कृत संकल्प रहता है और परम सत्य को समझने के लिए मनुष्य में अपनी इंद्रियों तथा मन को पूरा संयम होना चाहिए। प्रहलाद महाराज में सारे गुण थे। वैष्णव सदैव सबों का शुभेच्छु होता है। उदाहरणार्थ 6 गोस्वामियों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। धीरा धीर जन प्रिय हो। वे भद्र तथा अभद्र दोनों के बीच लोकप्रिय थे। वैष्णव हर एक के लिए समभाव होता है, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी क्यों ना हो। आत्मवत वैष्णव को परमात्मा की तरह होना चाहिए। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। निसंदेह परमात्मा को किसी से घृणा नहीं होती। वह एक ब्राह्मण के हृदय में भी वास करते हैं और एक शूकर के भी हृदय में। इस प्रकार जिस प्रकार चंद्रमा चांडाल के घर में अपनी मनोहर किरणें प्रसारित करने से इनकार नहीं करता, उसी तरह एक वैष्णव किसी के भी कल्याण के लिए कर्म करने से इनकार नहीं करता। अतएव वैष्णव अपने गुरु के प्रति सदैव आज्ञाकारी होता है। आर्य शब्द ज्ञान में बड़े चढ़े व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। जिसमें ज्ञान का अभाव है वह आर्य नहीं कहला सकता, किंतु इस समय तो आर्य शब्द का उपयोग नास्तिकों के लिए प्रयुक्त होता है। कलयुग की यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। गुरु शब्द उस आध्यात्मिक स्वामी को बताता है जो अपने भक्त को कृष्ण के विज्ञान में अथवा कृष्ण भावनामृत में दीक्षित करता है, जैसा कि श्रील विश्वनाथ ठाकुर ने बताया है श्री भगवान मंत्रोपदेश के गुरु वित्यर्थः। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागरजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो कल प्रहलाद महाराज के गुणों की चर्चा प्रारंभ की कि कैसे जब युधिष्ठिर महाराज को वर्णन कर रहे हैं नारद मुनि की कितने अच्छे गुण थे प्रहलाद में, और फिर उन्होंने वर्णन किया चार पुत्र थे हिरण्यकशिपु के, चारों में से श्रेष्ठ थे प्रहलाद अपने गुणों के कारण, और उनके गुणों का वर्णन करने लगे महदुपासक। कितने गुणों की चर्चा अभी तक हो चुकी है, कौन कौन से? महद उपासक और ब्राह्मण्य। महद उपासक मतलब वो भगवान के भक्तों के उपासक थे। कल हम लोगों ने चर्चा की उपासना कितने प्रकार की हो सकती है और कैसी होनी चाहिए। और दूसरा गुण ब्राह्मण्य। ब्राह्मण्य अर्थात कि किस प्रकार हम लोग भगवान को केंद्र में रखकर अपने जीवन को चला सकते हैं। तो आगे गुणों का वर्णन करते हैं। ब्राह्मण्य सत्य संधो शील संपन्न, ब्राह्मण्य शील संपन्न सत्य संधो विजेन्द्रिय जितेन्द्रिय। तो यहाँ पर वर्णन है कि शील संपन्न। शील संपन्न मतलब प्रहलाद महाराज के अंदर बहुत नम्रता थी। शील, शील का अर्थ होता है बड़ा नम्र होना, अच्छे गुण होना। तो शील मतलब जो बहुत अच्छा आचरण करता है, जिसका आचरण बहुत ही अच्छा है। तो शील संपन्न, उनके अंदर बहुत नम्रता थी। जैसे हम कल वर्णन कर रहे थे कि अपने असुर पिता को भी वो जाकर प्रणाम किया करते थे, पूर्ण दंडवत प्रणाम। आजकल तो कोई लड़का अगर भक्त हो जाता है इस्कॉन में, तो फिर अपने पिता अगर वो भक्त नहीं है तो उनको कोई प्रणाम नहीं करता, कहता ये तो अभक्त है, कर्मी व्यक्ति है, इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं। लेकिन देखिए प्रहलाद महाराज कितने श्रेष्ठ भक्त थे। यहाँ तो कोई छोटा सा भक्त अभी शुरू करता है भक्ति, अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ मानने लगता है, पिता को ये कर्मी व्यक्ति है, ये तो भक्त नहीं है, अभक्त है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, इसीलिए इसको प्रणाम नहीं करूँगा। तो एक छोटा सा भक्त के मन में ये भावना आती है, लेकिन प्रहलाद इतने श्रेष्ठ भक्त थे। और कौन था हिरण्यकश्यपु? जितने श्रेष्ठ ये भक्त थे उतना श्रेष्ठ वो असुर था, असुर वर्य, असुरों में श्रेष्ठ था। तो प्रहलाद महाराज भक्तों में श्रेष्ठ हैं और उनके पिता असुरों में श्रेष्ठ हैं। देखिए श्रेष्ठ लोगों का परिवार है ना? तो ऐसे पिता को भी जो कि इतना श्रेष्ठ असुर था, हालांकि आजकल के बच्चों के तो पिता इतने श्रेष्ठ असुर नहीं होते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज जब जाते थे तो दंडवत प्रणाम करते थे, जबकि वो उन्हें कष्ट दे रहे थे, मारने का प्रयास कर रहे थे, उनकी भक्ति रोक रहे थे, लेकिन प्रहलाद महाराज, इसको कहते अजात शत्रु, उन्होंने कभी किसी को शत्रु माना ही नहीं। शत्रु और मित्र प्रहलाद महाराज समझाते हैं, जब उनके गुरु उनको पढ़ा रहे थे गुरुकुल में कि देवता विष्णु ये हमारे शत्रु हैं और असुर जितने भी हैं हमारे मित्र हैं, प्रहलाद महाराज ने पूछा कौन शत्रु और कौन मित्र, किसके आधार पर शत्रु माना जाता है और किसके आधार पर मित्र माना जाता है, कौन हमारा शत्रु है और कौन मित्र है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज ने किसी को शत्रु माना ही नहीं। तो ऐसे पिता को भी वो दंडवत प्रणाम करते थे, सोचिए क्या भाव होगा। प्रहलाद महाराज इसको कहते हैं शील संपन्न, हाँ तो शील संपन्न थे वो। और इतना ही नहीं, जब हिरण्यकश्यपु का वध हो गया तो उस समय जब नरसिंहदेव ने कहा कुछ मांगो, मांग नहीं रहे थे, अंत में मांगा, क्या मांगा कि ये जो मेरे पिता हैं जिन्होंने आपके प्रति बहुत अपराध किया, उस समय भी प्रहलाद महाराज ने ये नहीं कहा कि ये जिसने मुझे बहुत कष्ट दिया था, कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ये मेरे पिता जिन्होंने आपके प्रति बड़ा अपराध किया, आप उनको क्षमा कर दीजिए। ये शीलता, क्या हम लोग कभी ऐसे व्यक्ति के लिए भला चाह सकते हैं जो हमें बहुत कष्ट देता हो? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जब तो वही कर सकता है जो इस भावना में है। कीर्तनीय सदा हरि कौन कर सकता है, अमानी न मान देना। यहां दिखला रहे प्रहलाद महाराज अपने उदाहरण से क्या अर्थ होता है अमानी न मान देना का। अमानी न मान देना मतलब वो व्यक्ति जो आपका अपमान कर रहा है, यहां केवल अपमान नहीं, हिरण्यकश्यपु तो मारने का प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी मान देना, उनको सम्मान दे रहे हैं और उनके अच्छे के लिए, उनकी मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण जहां भक्तों ने इस शीलता को दिखला है। तो ये प्रहलाद महाराज हैं, जिस पिता ने इतना अत्याचार किया, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं इसे क्षमा कर दीजिए, इन्हें मुक्त कर दीजिए। तो ये इनकी शीलता है। एक भक्त को नम्रता बहुत आवश्यक है, और नम्रता किसके आधार पर? नम्रता बाहर भी देखते हैं हम लोग, कई लोगों में नम्रता होती है जो भक्त नहीं है, वो नम्रता एक दिखावा है। कैसे दिखावा है? कोई कह सकता है अरे क्या कोई भक्त है वही नम्र होगा, बाहर के इतने सारे लोग नम्र होते हैं, कितनी अच्छी तरह बात करते हैं, आप जाइए तो झुक कर बात करते हैं, आप जाइए जापान में लोग झुकते ही रहते हैं, जैसे मिलते हैं एक दूसरे को झुक के, कितने नम्र हैं। तो क्या उनकी नम्रता का कोई लाभ नहीं है? प्रभुपाद समझाते हैं उनकी नम्रता या उनकी अच्छाई चोरों की ईमानदारी के समान है। जैसे एक बार कुछ चोरों का दल चोरी करके आया, फिर सब बैठ गए और उनका जो सरदार था उसने कहा देखो इन सब का हम ईमानदारी से बंटवारा करेंगे, ये जो धन है इसका ईमानदारी से, कोई उसमें छल नहीं होगा। प्रभुपाद कहते चोरी का माल है, क्या ईमानदारी है उनके अंदर, पहले तो चोरी की हुई है अब ईमानदार बन रहे हैं। इसी तरह अगर कोई भगवान की भक्ति नहीं कर रहा तो चोर है, भगवान से सब कुछ ले रहा है ये जल ले रहा है, वायु ले रहा है, ये आकाश की ये जो हमें प्रकाश मिल रहा है ये ले रहा है, भूमि ले रहा है, अन्न ले रहा है, सब कुछ तो भगवान से लिया है, ये शरीर भगवान से लिया है और भक्ति नहीं करता, लेकिन बड़ा अच्छा है, चोरों का सरदार है, बस ये चोरों की ईमानदारी है। तो चोरों की ईमानदारी का क्या लाभ है? हैं तो चोर, दंड तो मिलेगा, क्या सरकार उन्हें छोड़ देगी कि बड़े ईमानदार चोर हैं, एकदम सही सही बंटवारा करते हैं? हाँ, कोई नहीं छोड़ेगा। क्या कोई चोर जब पकड़े जाएं तो जज के सामने आकर कह सकते कि हम लोग बड़े ईमानदार हैं, हमने 10 किलो सोना लूटा, 10 लोग थे, एक एक किलो बराबर बांटा, 2 ग्राम भी इधर उधर नहीं, तो क्या जज छोड़ देगा कि बड़े ईमानदार लोग हैं? इसी तरह इस जगत के लोग हैं जो भक्ति नहीं करते, बहुत अच्छे हैं, अच्छे कार्य करते हैं, नम्र हैं इत्यादि, लेकिन लाभ क्या है? जब जब यमराज के सामने जाएंगे तो यमराज ये नहीं देखेंगे तुमने क्या अच्छा किया, यमराज देखेंगे भक्ति कितनी की, कंठी है कि नहीं गले में, जब करते हो कि नहीं, तिलक लगा है या नहीं, नहीं तो सब एक ही श्रेणी में, सब चोर है। तो इसीलिए शील संपन्ना, उस व्यक्ति के अंदर वो नम्रता, तो हमारी नम्रता भक्ति के आधार पर होनी चाहिए, अपनी स्थिति को जानकर होनी चाहिए कि हम भगवान के समक्ष नगण्य हैं, कोई हमारी बहुत महानता नहीं है भगवान के सामने या भगवान के किसी भी जीव के सामने। एक जो श्रेष्ठ भक्त होता है उसके लक्षण क्या है? उसके लक्षण हैं कि वो देखता है कि सब लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, केवल मैं ही एक हूं जो भगवान की सेवा में नहीं लगा। ये श्रेष्ठ भक्त का कार्य भाव है। श्रेष्ठ भक्त वो नहीं है जो देखता है कि अब मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया, अब मेरा प्रवचन सुनने के लिए 1000 लोग आते हैं, लोग मुझे दंडवत करते हैं, अब तो मुझे भगवान भी थोड़े समय में आके दंडवत करेंगे। वो भक्त नहीं है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ भक्त कौन है? सोचते देखो सब लोग सेवा कर रहे हैं, मैं ही एक हूं जो नहीं। वो तो पापियों को भी सेवा करते हुए देखता है, किसी जीव को वो नहीं देखता कि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहा है भगवान की, लेकिन मैं ही नहीं कर रहा हूं। ये श्रेष्ठ भक्त के लक्षण है और ये है शील संपन्ना। और ऐसी अवस्था में कीर्तनीय सदाहरी, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये नम्रता चाहिए। तो देखिए प्रहलाद ने दिखलाई, हिरण्यकश्यपु अपमान करते थे, मारते थे, प्रयास कर रहे हैं हत्या करने का, जलाने का, क्या क्या नहीं प्रयास किया प्रहलाद को, लेकिन प्रहलाद को कोई उनसे द्वेष नहीं। इसे कहते हैं सही दृष्टि में अमानी न मान देना, और ये गुण हमें अपने अंदर लाना। हमें केवल उन व्यक्तियों को मान नहीं देना है जो हमें मान देते हैं, उनको तो कोई भी दे सकता है। जो व्यक्ति आपके आगे पीछे भागे, आपको बड़ा मान सम्मान दे, आप उनसे प्रेम करो, ये बहुत अच्छा। और कोई व्यक्ति आपको अपमान करे तो आप बोलो इसको तो छोड़ूंगा नहीं, मैं देख लूंगा। भक्त वो है अमानी न मान देना कीर्तनीय सदाहरी। तो ये उदाहरण हम लोग प्रहलाद महाराज के जीवन में देखते हैं। तो प्रहलाद महाराज शील संपन्न, हाँ, तो ऐसा हमारे अंदर शीलता होनी चाहिए। और ये शीलता जैसे हम बता रहे थे भक्ति के आधार पर होनी चाहिए, हमें भक्ति सीखनी है, क्योंकि भक्ति के आधार पर नहीं है तो हम इस शरीर को सब कुछ मान लेते हैं, इस शरीर को एक बहुत बड़ा उपहार मान लेते हैं, भगवान का नहीं अपना खुद का। जैसे एक बार एक व्यक्ति के पास एक कुत्ता था, बड़ा बदमाश कुत्ता था, जब देखो किसी को काट लेता था, भौंकता था, लोग परेशान थे। तो जो मालिक था परेशान हो गया, तो इसने कहा कि ठीक है इसके लिए क्या करते, उसने एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का जो टुकड़ा था वो बांध दिया उसके गले में कि अब ये भाग नहीं पाएगा काटने, क्योंकि जब भी लोग आते थे भाग भाग कर काटता था, तो इतना बड़ा टुकड़ा है तो भाग नहीं पाएगा, तो लकड़ी बांध दी गले में। अब इस कुत्ते ने क्या सोचा कि मैंने इतने लोगों को काटा है, इतने लोगों को हैरान किया है, इसीलिए ये मेडल मिला है मुझे। और उस मेडल के चलते वो सर उठाकर ऐसे घुमा करता था, किसी को और नहीं, किसी दूसरे कुत्ते से बात नहीं करूंगा, क्यों, अब मैं श्रेष्ठ हो गया, मेडल मिल गया। इसी तरह जब हमें शरीर मिलता है तो हम लोग इसको मेडल समझ लेते हैं, वैसे मेडल नहीं है ये, तो हमारी धूर्तता के कारण मिला है हमें, नहीं तो भौतिक शरीर थोड़ी मिलता है ना। भौतिक शरीर मिला है क्योंकि हमने पाप किए, अपराध किए, काटा लोगों को, पता नहीं किसको काटा होगा, खैर, तो उसके कारण ये मिला और हम इसको मेडल मानते हैं, मेरा शरीर इतना सुंदर है, कोई मेरी तरह सुंदर नहीं, देखूंगा नहीं मैं, इसको नहीं मिलूंगा, उसको नहीं मिलूंगा, अहंकार। तो ये शील संपन्नता नहीं है। हमें जानना चाहिए कि ये तो भगवान ने लकड़ी बांध दी है, बड़ा बदमाश जीव है, इसके लकड़ी बांध दो और कई जन्मों तक बंधी रहती है लकड़ी और हम लोग खुश रहते हैं। कुत्ते को तो ये करना चाहिए था कि जैसे ही लकड़ी बंधती तो बड़ा नम्र हो जाता कि अरे अरे मैंने कितना पाप किया, कितने अपराध किए, कितने लोगों को काटा, मेरे स्वामी ने एकदम ठीक किया, तो एकदम नम्र हो जाता तो फिर हट जाती लकड़ी। लेकिन ये तो और अहंकारी। तो हमें भी यही सोचना है, ये जो शरीर, ये जो मेडल मिल गया है हमें, ये इसको, हमें इसको पाकर नम्र होना है कि अरे अरे मैंने क्या क्या किया, कितने पाप किए होंगे तभी तो इसी जगत में बना हुआ। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं पापी नहीं हूं, कौन कह सकता है इस जगत में रह के कि मैं पापी नहीं हूं? अरे ये भौतिक शरीर है अर्थात पापी हो, और क्या प्रमाण चाहिए, और क्या देखना है? कोई कहते नहीं मैंने इस जीवन में कुछ नहीं किया, उस जीवन में कुछ, अरे शरीर जब तक है पाप है बस। अगर पापी नहीं हो तो फिर भौतिक जगत में क्या कर रहे हो, राइट? अगर कोई व्यक्ति जेल के अंदर है और वो कहे कि मैं अपराधी नहीं हूं तो अंदर क्या कर रहा है? बाहर रहना चाहिए, राइट? जब तक अंदर है पापी है, हाँ जब निर्णय हो जाएगा पापी नहीं है तब बाहर जाएंगे, लेकिन जब तक अंदर है पापी है। इसी तरह जब तक इस जगत में इस भौतिक शरीर है पापी, तो इसको मेडल नहीं मानना चाहिए, इसको श्राप मानना चाहिए। वैसे भी देखिए शास्त्रों में जहां भी श्राप दिया जाता है कहा जाता है जाओ पृथ्वी पर मनुष्य बन जाओ। हर जगह हम लोग देखते हैं कोई ऋषि मुनि किसी देवता को श्राप देता है जाओ मनुष्य बन जाओ, मतलब कितना शापित जीवन है मनुष्य का। और हम लोग कितने अहंकार से जीते हैं कि बहुत बढ़िया मैं मनुष्य हो गया। तो इस शरीर को पाकर हमें नम्रता आनी चाहिए, शील आना चाहिए। व्यक्ति को दंड इसलिए दिया जाता है कि दंड से वो सुधर जाए, दंड इसलिए नहीं दिया जाता कि उस वो और ज्यादा बदमाश हो जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कोई अच्छे व्यक्ति को दंड दिया जाता है, वो जेल में जाता है, अपने ही जैसे और लोगों से मिलता है तो चोरी करने के नए नए तरीके सीख लेता है ना, उसको नहीं पता होते, उसने एक बार की होती, पकड़ जाता है, अंदर जाता है, एक्सपर्ट लोग होते हैं वहां पर, वो उसको सिखाते हैं, अरे तुम क्या किया था, बोले ऐसे पकड़े गए, ऐसे थोड़ी, हमें देखो हम लोग 20 साल के बाद पकड़े गए, तुम पहले साल में पकड़े गए, बेकार आदमी है, चलो आपको नए नए चीज़ें बताते हैं, ऐसे चोरी करो वैसे चोरी करो, तो वो सीखता है बहुत बढ़िया और बाहर आके फिर वो भी 20 साल तक नहीं पकड़ा जाता। ऐसे ही हम लोग ये भौतिक शरीर लेते हैं, इस जगत में आते हैं, पहली बार पहली गलती हो गई आ गए, और यहाँ पर हमें दक्ष लोग मिलते हैं, एक्सपर्ट लोग जो लाखों करोड़ों जन्मों से यहाँ पर हैं, तो बोलते हैं अरे तुम आ गए क्या गलती, हम तुम्हें सिखाते कैसे जीवन जीना है, बाहर जाना नहीं सिखाते, हम सिखाते चोरी कैसे करनी है, भगवान के जो चीजें हैं उनको कैसे चुराना है हम सिखाते, वो भी एक्सपर्ट एकदम बढ़िया चीजों से। और व्यक्ति सोचता हाँ ये तो सही बना रहता। तो इसीलिए इस शरीर को हमें मेडल नहीं मानना है, इस शरीर को हमें श्राप मानना है कि हमारी गलती से मिल गया है, अब इसको त्यागना है, अब इसी का उपयोग करना है। भक्त क्या है कि भले ये शरीर अब हमारे लिए बहुत बुरी अवस्था मिली है लेकिन अब इस शरीर का उपयोग करना सीखें। तो हमें रोना नहीं है बैठ के कि हाय हाय क्या हो गया, ये शरीर मिल गया अब क्या होगा, नहीं, हमें मिल गया है, मान लिया कि हमारी गलती थी, लेकिन अब क्या करना है। तो जेल में आया है उसने मान लिया कि मैंने चोरी की, तो उसको अब दक्ष लोगों के साथ एक्सपर्ट लोगों के साथ चोरी करना नहीं सीखना है, उसको ऐसे काम करने हैं जिससे उनसे पहले वो बाहर चला जाए। जब ये इतनी ज़्यादा उसका दिमाग खराब ना हो उससे पहले चला जाए। इसीलिए हमें ऐसे कार्य करने हैं कि हम भौतिकवादी लोगों के साथ मिले नहीं, उनसे सीखे नहीं कैसे धन कमाना है, कैसे आनंद लेना है, कैसे इस जगत में बने रहना है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, है ना। लोगों का तो यही है बस, ये वो एक्सपर्ट चोर है जो जेलों में है, हमें उनसे नहीं सीखना है। हमें किन से सीखना है? प्रहलाद महाराज से। शील संपन्न, हाँ, तो उनके अंदर इतना शील था, इतना शील संपन्न थे कि वो दूसरों के लिए हमेशा इतनी नम्रता। उन्होंने तो ये भी कहा भगवान से, एक भागवत में ही वर्णन है उनकी प्रार्थनाओं में, वो कहते हैं कि कृष्ण आपको कितना कष्ट लेना पड़ता है भौतिक जगत बनाने के लिए और फिर उसको चलाना, कोई आसान है काम? हर एक जीव की इच्छाओं को पूरा करना और हर एक जीव के हृदय में रहना कितना कष्ट है, है ना। हर एक जीव के हृदय में रहते हैं भगवान, और जीव मतलब चाहे वो शूकर हो, कुकर हो, प्राणी हो, पक्षी हो, पेड़ हो, भगवान हर एक के हृदय में। तो प्रहलाद महाराज कहते क्यों इतनी चिंता ले रहे हो आप, इतना जगत बनाया, ब्रह्मांड बनाया, इतना कष्ट ले रहे हो, आपके लिए एक सरल काम है, सृष्टि की रचना करना, उसको बनाना, उसको संहार करना, सबकी इच्छाओं को पूरा करना, सारे जीवों को देखना, उनको खिलाना पिलाना, कितना कष्ट का काम है, है ना। हम लोग यहाँ थोड़ा सा मंदिर चला रहे हैं, प्रयास कर रहे, चला तो नहीं रहे, चला तो कृष्ण रहे, हम लोग थोड़ा सा कर रहे हैं तो उसमें ही हम लोगों को लगने, अरे अरे क्या हो गया, कितना हेडेक है, एक छोटा सा मंदिर, भगवान कितने सारे ब्रह्मांड चला रहे हैं, उनको कितना हेडेक होता होगा, आप सोचिए। अभी हम लोग किचन की बात करें तो किसी को राइस पसंद है, किसी को चावल पसंद नहीं है, किसी को चपाती चाहिए, किसी को डोसा चाहिए। अब वे हमारे किचन वाले सबको संतुष्ट कर नहीं पाते, इसीलिए हमेशा उनको बुरा भला सुनना पड़ता है। अब भगवान देखिए, कब से करोड़ों 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 सालों से चले आ रहे हैं, खिला रहे हैं, सबको खिला रहे हैं, सबकी इच्छाओं को पूरा। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं क्यों इतनी चिंता ले रहे हो, सबको मुक्त कर दो ना, वो तो आपके लिए सरल है, भेज दो सबको अपने धाम, क्योंकि धाम में ये सब चिंता नहीं है भगवान को। धाम में कहाँ सृष्टि करनी पड़ती है, कहाँ मेंटेनेंस करना पड़ता है, कहाँ उसका प्रलय होता है, कहाँ वो चिंता होती है कि खेत में अन्न आएगा कि नहीं, बारिश होगी कि नहीं। तो प्रहलाद महाराज भेज दो सबको। तो प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं पे पूरे एक ब्रह्मांड के जीव को भगवान ने मुक्त कर दिया। अब आप पूछेंगे हम लोग थे कि नहीं उस ब्रह्मांड में, थे या नहीं हम लोग, हाँ थे नहीं, पक्का? पक्का नहीं थे तभी तो इधर उस ब्रह्मांड में होते तो अभी तक तो चले गए होते। तो ब्रह्मांड के सारे जीवों को भगवान ने मुक्त कर दिया केवल एक प्रह्लाद की कृपा याचना पर। यह है शील संपन्न। उन्होंने अपने लिए नहीं मांगा, ये नहीं कहा कि बाकी तो ठीक है मुझे मुक्त कर दो। प्रहलाद महाराज को भगवान की भक्ति पर इतना विश्वास था कि प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं, हे भगवान मुझे अपनी बिल्कुल चिंता नहीं है, अहंकार से नहीं, श्रद्धा से, विश्वास से कह रहे, भगवान मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है अपनी, क्यों, मैं तो आपकी भक्ति कर रहा हूं, मुझे कुछ होगा नहीं, लेकिन मुझे चिंता इन मूर्खों की है जो आपसे दूर रह रहे हैं, आपकी भक्ति नहीं कर रहे और सोच रहे हैं कि हम सुखी हैं, मुझे इनकी चिंता है, आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। मतलब मुझे मुक्त मत कीजिए, क्यों, मैं तो वैसे ही होने वाला हूं, आप रोक ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि भगवान प्रेम करते हैं भक्त से इतना, वो कैसे अपने आप को रोक सकते हैं, जिसके लिए आधा नर और आधा सिंह बन जाए भगवान, तो उसके उसको क्या मुक्त करने के लिए सोचेंगे भगवान कि हाँ अरे इसको मुक्त करूं या ना करूं। तो इसलिए मेरे लिए चिंता नहीं है मुझे, तो ये मूर्खों की चिंता है, इनको आप मुक्त कीजिए। इसे कहते हैं शील संपन्न, ये नम्रता चाहिए। तो एक भक्त के हृदय में भक्ति पर आधारित नम्रता होनी चाहिए, ये जानते हुए। नम्रता कैसे आ सकती है? पहली चीज हम ये जाने कि हमारा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ये अहंकार के लिए सबसे पहली पहला लक्षण है अहंकार का, जहां हम सोचने लगते हैं कि हमारा कोई अस्तित्व है, स्वतंत्र, भगवान से स्वतंत्र। तो पहली चीज नम्रता के लिए, इस चीज को जान लीजिए, विश्वास कर लीजिए कि हमारा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, हम स्वतंत्र नहीं हैं। तब तो नम्रता आएगी, जब तक हमें लगेगा कि हम स्वतंत्र हैं, जो चाहे कर सकते, नम्रता नहीं आएगी। दूसरी चीज हमें यह जाननी है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, वो ठीक है, लेकिन फिर किस पर आश्रित हैं? हम पूर्ण रूप से कृष्ण पर आश्रित हैं। ये दूसरी चीज माननी है। पहली चीज हम स्वतंत्र नहीं हैं, दूसरी चीज पूर्ण रूप से कृष्ण पर आश्रित हैं हर चीज के लिए। तब हृदय में नम्रता आएगी। जब स्वतंत्र नहीं है, हर चीज के लिए आश्रित हैं, तो फिर अहंकार कैसा? फिर किस चीज का अहंकार? मान लीजिए कोई व्यक्ति हर चीज के लिए किसी दूसरे पर आश्रित है, तो उसको क्या अहंकार होगा? इसलिए अहंकार नहीं। तो नम्रता हमें आ सकती है जब हम अपनी स्थिति को समझें, अर्थात हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम हमेशा कृष्ण 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 है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम लोग एक बार महामंत्र कहेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। जाके थोड़ा उसको हटा दो वहां से। कोई बात नहीं, भगवान के मंदिर में भागवत कथा सुनते हुए ऐसे तो हम लोग कामना करते, हमारे लिए भी ऐसा कभी हो तो इसीलिए चिंता नहीं कीजिए उसके बारे में। तो शील संपन्न का अर्थ है कि ऐसी नम्रता हमारे हृदय में हो, हम जाने कि हमारा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। दूसरे शब्दों में, अपनी बड़ी छोटी सी सूक्ष्म अणु अवस्था को समझें। हम प्रभु नहीं हैं, हम विभु नहीं हैं, हम स्वामी नहीं हैं, हम बहुत छोटे से अणु, दास दास दासान दास। और ये व्यक्ति केवल भक्ति के आधार पर समझ सकता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं शील संपन्न। तो ये दूसरा गुण, तीसरा गुण ना, कितने हो गए? चौथा, तीसरा, तीसरा गुण। पहला क्या था? महत उपासक, भक्तों की उपासना करते हैं। दूसरा ब्रह्मण्य, और तीसरा शील संपन्न। याद रखिएगा आप लोग, परीक्षा में आएगा। चौथा गुण आगे वर्णन कर रहे हैं, ब्रह्मण्य शील संपन्न सत्य संधो। सत्य संधो का अर्थ होता है, जैसे प्रभुपाद यहां समझा रहे हैं, जो सत्य को जानने का, परम सत्य को जानने का प्रयास करता है। और एक अर्थ होता है सत्य संधो का। संधो को कभी कभी कार्य भी कहा जाता है, कार्य या प्रतिज्ञाएं, जैसे संधि कहते हैं ना, संधि हो गई हमारे अंदर, हमने दोनों ने एक दूसरे को वचन दे दिया, उसको संधि कहते हैं। संधि समझते हैं ना आप लोग, एग्रीमेंट, चलो हम आपको इतना देंगे, आप हमें ये दे देना इत्यादि, तो संधि कहते हैं। तो इसको संधो, सत्य संधो मतलब वचन का पालन करना। तो प्रहलाद महाराज अपने वचन के पालन में कभी चूकते नहीं थे, सत्य संधो। जो कह दिया, जो वचन लिया, जो शब्द कहे, उन पर पूरे तौर से उसको वो पालन करते थे। तो इसलिए उनको कहा जा रहा है सत्य संधो। ये बेचारा रो रहा, अकेला रह गया है ना, ढूंढ रहा है उसको, कहाँ गया कहाँ गया। हाँ देखो, पहले नहीं चिल्ला रहा था ना इतना, अभी चिल्लाने लग गया। देखिए अगर पक्षियों में भावनाएं हो सकती हैं तो एक धर्म के लोग कहते हैं कि पशुओं में कोई भावना नहीं होती, उनको मार देना चाहिए, हम खा सकते हैं। यहाँ देखिए एक छोटे से पक्षी बेचारा अब कितना चिल्ला रहा, अभी तक नहीं चिल्ला रहे थे, दोनों बड़े प्रेम से घूम रहे थे, अब वो चिल्ला रहा, रो रहा है, पुकार रहा है। तो पक्षियों में भी भावना होती है। हम लोग कहते हैं आत्मा नहीं है, मार दीजिए, खाने के लिए मार दीजिए। कैसे लोग मार सकते हैं देखिए, अब इस अवस्था में बेचारा कितना भी वो भी दुखी है लेकिन मार दिया जाता है। क्यों? कोई भावना नहीं है, आत्मा नहीं है उनमें, कोई प्राण नहीं है। कितना गलत भाव है। तो ऐसे हमें जानना चाहिए कि सत्य संधो मतलब जो अपनी प्रतिज्ञाओं में दृढ़ रहे, सत्य पे बना रहे, उसको सत्य संधो कहते हैं। देखिए वो शांत हो गई, उसने कहा हाँ ये लोग समझ गए हैं मेरे बारे में, सत्य संधो। हाँ उधर बैठी हुई है, चले गए, अच्छा थक गई होगी रो रो के, ले ये लोग सुनने वाले नहीं हैं। सत्य के अपने वचनों पर हमें बने रहना चाहिए। तो सत्य संधो, तो एक है कि हमें वचनों पर बने रहकर परम सत्य की खोज करनी है, और जो हम कहें उस पर बने रहें। जो हम वचन देते हैं, जब हम भक्ति में आते हैं तो हम अपने गुरु को, अधिकारियों को कुछ वचन देते हैं, तो उन वचनों पर हम बने रहें सत्य का, सत्य के रूप में। इसको कहते हैं सत्य संधव। जैसे हम लोग नियम लेते हैं एकादशी के दिन हम लोग अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। दरअसल कहा जाता है कि एकादशी के दिन अन्न में पाप प्रवेश कर जाता है, लेकिन भक्तों के लिए वो कारण नहीं है, क्योंकि हम लोग तो भगवान को अर्पण करते हैं। तो अगर अन्न को भगवान को अर्पण कर दिया जाए तो क्या फिर भी उसमें पाप रह सकता? नहीं रह सकता। तो फिर एकादशी के दिन हम क्यों नहीं अन्न खाते? भगवान का प्रसाद है, उसमें तो कोई पाप नहीं है, खाना चाहिए, क्यों नहीं खाते? अन्न खाने में क्या बुराई है एकादशी में? हाँ अन्न खाने में बुराई है, प्रसाद खाने में क्या है? मान लीजिए कि आपको कुछ दिया गया कि इसमें पाप है, आप भगवान के सामने रखते हैं, ऑफरिंग करते हैं, भगवान खाते हैं, और उसके बाद भी आप सोचते हैं कि इसमें पाप है, मतलब आपको भगवान पर विश्वास नहीं है, मतलब आप ये सोच रहे हैं कि भगवान ने शुद्ध नहीं किया इसको, तो फिर क्यों नहीं खाते हैं? केवल एक ही कारण, हमने अपने अधिकारियों को, गुरु को ये वचन दिया है, या उन्होंने हमें आदेश दिया है और हमने वचन दिया है कि एकादशी के दिन हम नहीं खाएंगे, बस ये कारण है। तो ये कारण नहीं है कि पाप आ जाता है, क्योंकि फिर अगर आप ये कारण कहेंगे तो लोग पूछेंगे अच्छा फिर ऑफरिंग नहीं करते हो? करते हैं, फिर पाप कहाँ जाता है? रहता है उसमें पाप? नहीं, एक ही कारण है, सत्य संधव। हमने वचन लिया इसलिए हम नहीं खाते। हालांकि एकादशी के दिन बड़ा कष्ट भी होता है भक्तों को, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें खानी पड़ती हैं जिससे लगता है कि अच्छा है निर्जल उपवास करें, लेकिन फिर भी उस कष्ट को लेते हैं, क्यों? वचन दिया। इसी तरह हमें अपने वचनों पर बने रहना चाहिए। हमने गुरु को, अधिकारियों को वचन दिया, हम 16 माला जप करेंगे या जो भी जितना भी करेंगे, उस वचन को बनाए रखना चाहिए। प्रभुपाद का आदेश है कि जब भगवान के आविर्भाव इत्यादि दिवस होते हैं उस पर उपवास करना चाहिए, तो हमें उपवास करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मुझसे तो नहीं होने वाला है, मैं तो खा पी कर करूँगा, ये ठीक नहीं है। ये हमने वचन तोड़ दिया, हम सत्य सिंधव संधव नहीं है। तो सत्य संधव का अर्थ है वचन का पालन करें बिना किसी के देखे। ऐसे नहीं कि कोई देख रहा है तब तो हम नहीं खाएं, और कोई नहीं देख रहा है तो दरवाजा बंद करके अंदर आराम से पूरा खाकर फिर कहें बहुत भूख लगी है, उपवास हो रहा, वो नहीं। सत्य संधव मतलब बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो उपवास के दिन, जब जिस दिन उपवास होता है उस दिन आश्रम में बकेट्स चली जाएं और बाकी दिन बाहर रहें, तो कोई देखता नहीं, क्योंकि किचन में खाएंगे तो सब देखेंगे, आश्रम में खाएंगे तो कोई नहीं देखेगा। कल हमने भी दरवाज़ा बंद किया हुआ था थोड़े समय के लिए खा नहीं रहे थे, समय चिंता। तो सत्य संधव मतलब अपने वचन पर हम बने रहें, चाहे कोई देखे या ना देखे। हम किसी को दिखाने के लिए उपवास नहीं करते, ये जान लीजिए। हमारा उपवास इसलिए नहीं है कि लोग देखे और कहें प्रभु क्या तपस्या है आपकी, बढ़िया। ये हमारा ये कोई उद्देश्य नहीं है उपवास का। उपवास का उद्देश्य अपने अधिकारियों को, अपने गुरु को और कृष्ण को प्रसन्न करना है। और कृष्ण कहीं भी देख सकते हैं, है ना। कृष्ण ने बड़े पावरफुल कैमरे लगा के रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण को देखने के लिए आपको यहीं आओगे तभी कृष्ण दिखाई देंगे। कहीं भी हो, आश्रम में कमरा बंद करके, खिड़कियां बंद करके, अंधेरा करके भी खा रहे हो तो भी कृष्ण देख लेते हैं। भागवत में वर्णन है, छठे स्कंद में भगवान ने बड़े पावरफुल कैमरे लगा रखे हैं देखने के लिए। सूर्य उनका कैमरा है। आप अभी दिन में कहीं भी कार्य करो सूर्य की रोशनी में करोगे, चंद्रमा उनका कैमरा है, पृथ्वी उनका कैमरा है। कुछ भी करोगे पृथ्वी पे तो करोगे, तो भगवान ने पृथ्वी लगा रखी है। हवा उनका कैमरा है, चलो पृथ्वी पे नहीं हवा में करोगे वहां भी देख। जल उनका कैमरा, जहां देखो कैमरे लगे हुए हैं भगवान। और हमारे कैमरों की तरह नहीं है कि कोई उसको ढक सकता है और फिर कर सकता, बड़े पावरफुल कैमरे हैं। और भगवान बैठे रहते गोलोक में अपने लैपटॉप पर देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है। करोड़ों करोड़ों जीवों के लिए उन्होंने हर एक के लिए लगा रखा है, और सबसे बड़ा कैमरा उन्होंने हर जीव के अंदर फिट कर दिया है परमात्मा के रूप में। वो तो यही है ना। चलो आप कहो मैं आप पृथ्वी पे नहीं करूंगा, हवा में नहीं करूंगा, जल में नहीं करूंगा, कहीं कहां तो करोगे वो, चलो किसी ने नहीं देखा। एक तो भगवान ने हर एक जीव के अंदर कैमरा फिट कर दिया, करोड़ों करोड़ों कैमरा। कितना खर्चा किया भगवान ने इस पृथ्वी को बनाने के लिए, है ना। कितने कैमरे लगवाए, हम लोगों ने तो चार पांच लगवाते हैं, कितना खर्चा हो जाता है, भगवान ने करोड़ों कैमरे लगवा दिए। तो इसीलिए सत्य संधो मतलब हमें अपने वचन पर बहुत दृढ़ रहना चाहिए, सत्य रहना चाहिए। जो बोलें जो कहें उसको पूरा करना चाहिए, चाहे कोई देखे या ना देखे। तो ऐसे थे प्रहलाद महाराज, सत्य संधव। भगवान का स्मरण करना है तो करना है, फिर चाहे कोई कुल्हाड़ी चलाए, अग्नि में फेंके, कुछ भी करे। प्रहलाद महाराज सत्य संधव, अपने वचन पर। विष्णु की भक्ति करनी है तो बस वही, चाहे हिरण्यकश्यपु कह दे या शंड और अमरक कह दे, कोई कह दे, प्रहलाद महाराज चूकने वाले नहीं। भगवान की भक्ति मतलब भगवान की भक्ति, ये सत्य संधव है। तो ऐसे सत्य पर रहकर, और क्यों ये करना चाहिए, ताकि हम परम सत्य को प्राप्त कर सकें। तो सत्य संधव का एक अर्थ है कि हम सत्य पर बने रहें, अर्थात अपने वचनों को, अपनी प्रतिज्ञाओं को बड़ी कड़ाई से पालन करें और उसके द्वारा परम सत्य को प्राप्त करें, यह सत्य संधव कहलाता है। तो इसीलिए हमें प्रहलाद महाराज की तरह, क्योंकि प्रहलाद महाराज जो वचन पालन कर रहे थे किस लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, राज्य पाने के लिए नहीं। राज्य पाने के लिए तो उनको झूठ बोलना था। अगर वो कह देते कि विष्णु भगवान नहीं है, विष्णु नहीं हिरण्यकश्यपु भगवान है, उनको तो सिंहासन दे देता प्रहलाद को, चारों में से तुम ही में एक योग्य पुत्र हो, तुम बैठो। लेकिन प्रहलाद ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने सत्य इसलिए नहीं कहा कि उन्हें राज सिंहासन मिले, सत्य इसलिए नहीं कहा कि धन संपत्ति मिले, सत्य इसलिए कहा कि कृष्ण मिले। भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो, वासुदेव भगवती यस्य नैसर्गिकी रति ही। ये और एक पहला गुण हमने बताया था, आप लोग भूल गए, कल बताया था ना, चर्चा की थी, वैसे आगे आएगा वो, लेकिन ये भी एक गुण की चर्चा हुई। तो इसीलिए कितने गुण हुए, हमने आपसे कल कहा था याद रखिएगा। पहला कौन सा है, वासुदेव भगवती यस्य नैसर्गिकी रति ही। दूसरा महदुपासक। तीसरा ब्रह्मण्य। चौथा शील संपन्न। और पांचवा सत्य संधव। तो ऐसे पांच गुणों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और सत्य संधो, जब हम अपनी प्रतिज्ञाओं पर दृढ़ रहते हैं तो अगला जन्म या आगे के लिए हम कम से कम मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के लिए निश्चित हो जाते हैं। अगर हम पशु जीवन जिएंगे तो वो भी निश्चित नहीं है। हमें दृढ़ रहना चाहिए। प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे सावित्री और सत्यवान की कथा की। सावित्री सत्यवान की कथा आप जानते हैं, कई बार कह चुके हैं। सावित्री ये एक राजकुमारी थी, इसने एक ऐसे राजकुमार को चुना जिसका राज्य चला गया था, जंगल में रहता था, लकड़ियाँ काटता था और तो और बहुत जल्दी मरने वाला था। जब चुनकर आई, पिता ने कहा था जाओ अपने आप ढूंढाओ, जो भी तुम चुनोगी उससे विवाह करेंगे। तो चुनकर आई, नारद मुनि ने कहा अरे 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 क्या कर दिया, किसको चुन लिया तुमने, वो तो मरने वाला है, बाकी बहुत अच्छा लड़का है, गुण बहुत है। नारद मुनि भी बताते बहुत अच्छी तरह। तो जब नारद मुनि ने सुना तो राजा से कहा अरे 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 क्या करते, राजा ने कहा क्यों क्या कुछ अवगुण है, अरे नहीं बहुत बढ़िया सारे गुण उसके अंदर है, तो फिर क्या गड़बड़ है, बस मरने वाला है, ज्यादा समय नहीं रहेगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो सावित्री ने कहा मैंने तो उसे अपना पति मान लिया, अब तो मैं उसी से विवाह करूंगी, लेकिन आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, दिन बता दीजिए, समय बता दीजिए किस दिन मरे। नारद मुनि ने लिख कर दे दिया इतने बजकर इतने मिनट पर और इस दिन मृत्यु होगी। सावित्री ने कहा ठीक है बाकी मैं देख लूंगी। तो सावित्री उस दिन, वैसे तो रोज नहीं जाती थी पति के साथ, उस दिन चली गई जानबूझकर, और उसने कभी कुछ मांगा ही नहीं था। तो उसके माता पिता जो लड़के के थे उन्होंने कहा ले जाओ, कभी उसने कुछ कहा ही नहीं है। तो चली गई और फिर एक लंबी कथा हम आपको संक्षेप में सुना रहे। यमराज आए लेने के लिए सही समय पर, सावित्री ने देखा पति को ले जा रहे हैं, सावित्री पीछे पीछे चल दी। यमराज ने देखा जब क्या बात है, बोले मैं भी चलूंगी, तुम नहीं आ सकती, ठीक है तुम एक वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा कि मेरे जो पिता हैं उनके संतान नहीं, उनको संतान हो जाए, ठीक है चल दिए। अब क्या हुआ, बोले अभी मैं आपके साथ ही आऊँगी, मेरे पति को ले जा रहे हो, अच्छा और एक वरदान मांग लो, तो मेरे जो ससुर इत्यादि हैं उनकी आँखें चली गई हैं, राज्य चला गया है उनके राज्य आँखें आ जाए, अच्छा ठीक है चल दिए। अब क्या हुआ, अरे अब तो दे दिया तुम्हें, ठीक है और एक वरदान मांगो। तो उसने कहा मेरी कोई संतान नहीं है, मेरे भी संतान हो जाए। यमराज ने कहा ठीक है दे दिया, फिर चल दिए। और फिर सावित्री पीछे, तो बोले अब क्या हुआ, बोले अब क्या आपने बोला कि मेरी संतान हो, पति को तो आप ले जा रहे हो, संतान कहाँ से होगी, तो पति को दो वापस। तो यमराज फंस गए, यमराज ने कहा ये बात तो सही है, मैंने तो दे दिया वरदान, तो फिर पति को वापस दे दिया। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये दृढ़ता है, तो अगर ऐसे दृढ़ता से हम बने रहेंगे अपने वचनों पर तो अगला जन्म निश्चित मनुष्य का मिलेगा। जैसे सत्यवान वापस मिला सावित्री को, हमें वापस मनुष्य शरीर मिलेगा, नहीं तो कोई गारंटी नहीं है कि मनुष्य शरीर ही मिलेगा। तो इसीलिए कम से कम हमें अपने वचनों पर बने रहना चाहिए। तो ये पांच गुण हम लोग चर्चा कर चुके हैं प्रहलाद महाराज के। हमने कल ही कहा था कि इतने गुण हैं उनके संभव नहीं है सारे गुणों की चर्चा, फिर भी प्रयास करेंगे। तो कल एक दिन और है, कल फिर से आगे के जो गुण बाकी हैं उनमें जितने गुण हो सकेंगे उसको चर्चा करेंगे, और नहीं तो फिर अगले साल नरसिंह जयंती के समय चर्चा प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।